कोशिश करनी चाहिए कि ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव हम रमजान से पहले अचीव कर लें. दैट इज वॉट एक्चुअली आई हैव बीन सेइंग. तो और विच वॉज नॉट डन, वेल वन शुडंट बी अननेसेसरली बॉदर्ड अबाउट दैट. कोई ऐसी बात नहीं है, इसका मतलब नहीं है नहीं, और पाकिस्तान बिल्कुल ही आउट हो गया. दूसरी चीज़ आपने काबुल की बात, काबुल में येस वी वॉन्टेड दिस एज अ डीमिलिटराइज सिटी, एवरी वन वॉन्टेड दिस, द कोलिशन वॉन्टेड इट एज अ डीमिलिटराइज सिटी. लेकिन हैविंग सेड दैट, वी अंडरस्टूड दैट इट इज नॉट दैट ईजी. उधर तालिबान अंदर बैठे हुए हैं काबुल के, बाहर नॉर्दर्न अलायंस है. हाउ कैन यू मेक श्योर दैट एवरी वन लीव, नॉर्दर्न अलायंस डजंट एंटर एंड तालिबान लीव द प्लेस. अनफॉर्चुनेटली वॉट हैपन वॉज कि ऑल ऑफ अ सडन ये तालिबान कोलैप्स जो हुआ, वो तो किसी ने प्रिज्यूम ही नहीं किया था, जज नहीं किया था ऐसे होगा. एकदम से वो गए तो वैक्यूम हो गया. वैक्यूम हुआ तो लोग मेरे ख्याल में नॉर्दर्न अलायंस गाड़ियों में साइकिलों में बैठ कर वो अंदर ड्राइव करके आ गए. सो आई डोंट थिंक कोई ऐसा बाई डिज़ाइन कोई ऐसी चीज हुई है कि हमें पाकिस्तान के व्यूज को लेट डाउन, पाकिस्तान को लेट डाउन करने के लिए. इट वॉज द एंटायर कोलिशन हु वॉन्टेड इट एज अ डीमिलिट्राइज सिटी. यूनाइटेड नेशन वॉन्टेड इट एज अ डीमिलिट्राइज सिटी, कोई सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं कह रहा था. सो अगर नहीं हुआ तो ग्राउंड रियल ग्राउंड पे हर चीज, ये चेस बोर्ड तो है नहीं, लोग हैं, लोग रिएक्ट करते हैं इन सर्टन सिचुएशन, और लोगों में वेरियस एथनिक ग्रुप्स हैं, सब एथनिक ग्रुप्स के अपने इंटरेस्ट हैं, वो इस तरीके से. एंड देन देर आर सम अदर वर्ल्ड प्लेयर्स ऑल्सो, उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं. तो चीज़ें, एवरीथिंग डज नॉट हैपन एज यू डिज़ायर. तो एज आई सेड, एज अ मिलिट्री मैन आई अंडरस्टैंड कि एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव आदमी फिक्स करता है, यू देन मूव, यू एग्जीक्यूट टैक्टिक्स टू अचीव द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. नाउ द टैक्टिक्स में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंसेज और फर्क आएंगे, बॉदर नहीं करना चाहिए. स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट को कॉन्स्टेंट, tactics will keep changing, you keep readjusting position and keep moving towards the strategic objective, and that one should not get bothered. ek choti cheezon se ekdam se pareshan hokar ye nahi kehna chahiye ki sab khatam ho gaya, hum gir gaye, pakistan khatam, pakistan ki importance khatam. pakistan ki importance kaise khatam ho sakti hai, kabhi nahi khatam hogi. on these tactical issues keep the strategy in mind, keep the end objective clear. end objective maine bata diya, uski taraf hum chal rahe hain. Whatever the tactical differences, in future also should tactical differences aa jaye, we should not bother about it. We'll keep moving towards the strategic objective. Aur hamari importance bilkul ghati nahi hai. We are still as important as we were. Aap ye jo jitne log aa rahe hain foreigners yahan, aap dekh rahe hain kitni dignitaries aa rahe hain, ye kyun hamare se chai peene aa rahe hain, ye kya? Obviously it is our importance that they are coming and discussing things with us.
Talking of strategic objectives, इन सब जब आपने ये फैसला किया था कि कोलिशन का हिस्सा बनना है, उस वक्त एक बर वक्त फैसले की जरूरत थी और टाइम शायद इतना नहीं था कि बहुत लंबी चौड़ी इसके ऊपर बहस हो सके, तो फैसला ले लिया. अब बहुत सारा वक्त गुजर गया है और आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स उस वक्त आइडेंटिफाई किए थे, उस फैसले के जरिए आप वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते थे. विद हाइंडसाइट आपको क्या ख्याल है कि अगर दोबारा कभी इस किस्म का माहौल बने तो वुड यू टेक द सेम डिसीजन?
यस, आई थिंक आई वुड टेक द वेरी मच द सेम डिसीजन. This is a very good question and an important question. हमने जो फैसला लिया वो क्यों लिया? आई वुड लाइक टू टेक अ लिटल टाइम ऑन दिस. पहली चीज तो हमारे कुछ पाकिस्तान के कोर कंसर्न हैं और फिर पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं. वॉट वर आर कोर कंसर्न? नंबर वन कोर कंसर्न आर ओन यूनिटी, आर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ पाकिस्तान, this is core concern number 1. number 2, the security of our strategic assets. number 3 core concern, our kashmir cause. ye teen hamare core concerns hain, hamare interest hain. teen hi mere khayal mein main kahunga hamare national interest hain. economic, hamari economy, economic well being, economic revival. dusra, hamari international standing, our diplomatic international, our international clout, हमारी प्रेस्टीज इंटरनेशनली. एंड लास्टली आर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, वॉट एवर इज डोमेस्टिक स्टेबिलिटी. नाउ लेट अस जस्ट वेरी क्विकली सी दीज. अगर हमारी कोर कंसर्न्स जो हैं तीनों, हमारी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कश्मीर कॉज एंड स्ट्रेटेजिक एसेट्स, अगर हमने ये पार्ट, कोलिशन का पार्ट हम नहीं होते, अभी आप देखें हमारा क्या हो रहा होता. I don't want to get into details.
Let's get into that. What are our worst fears? Kya ho jana tha?
Obviously, all these, I mean, our strategic assets. वैसे ही लोग हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स के खिलाफ थे कि ये गलत हाथों में ना चले जाएं. अभी भी कंसर्न हैं लोगों के. दैट वुड हैव सर्टनली बी द फॉरमोस्ट कंसर्न एंड आई थिंक सिक्योरिटी ऑफ दोस स्ट्रेटेजिक एसेट्स वुड हैव बीन एंडेंजर्ड. कश्मीर एंड यू कुड इमेजिन कि फिर कश्मीर कॉज का क्या होना चाहिए होता. अब ये दोनों अगर जाते जाहिर है दे वुड हैव बीन सम एक्शन अगेंस्ट अस. आई थिंक द होल वर्ल्ड वुड हैव जॉइंड टू वट एवर दे वुड हैव एक्टेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान. एंड आई थिंक अगर हम ये जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे जो माइनॉरिटी एक्सट्रीमिस्ट जो मैं कहता हूँ अगर उनकी बातों में हम आ जाते ये हो रहा होता हमारे साथ. वहाँ से तो अफगानिस्तान से लोग भाग कर इधर आ जाते. हम पता नहीं कहाँ भाग कर जाते. आई रियली डोंट नो वॉट वुड हैव हैपन टू पाकिस्तान. एंड देन आर इंटरेस्ट जो है इकॉनमी का देखें आप हमारी एक तो नेशनल स्टैंडिंग. आई थिंक इंटरनेशनली वी हैव गेन्ड इन आवर स्टैंडिंग. The receptions and the importance given to Pakistan when we just went to the United Nations and abroad has never been done before. So therefore, our standing internationally has improved. Our domestic environment, I think, it has improved. Although immediate sign नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन improvement मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी extremist हैं इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया. वी नो वेयर दे स्टैंड. पाकिस्तान हैज रिजेक्टेड दैम एंड आई वुड लाइक टू मूव अगेंस्ट दैम इन अ मोर कॉन्क्रीट मैनर टू एंश्योर दैट मॉडरेट जो वास्ट मेजॉरिटी है उनकी रिट डोमिनेट करे पाकिस्तान में एंड नॉट द स्मॉल माइनॉरिटी विच होल्ड्स देम एट रैंसम. आई वुड लाइक टू मूव अगेंस्ट दैम बिकॉज दे हैव एक्सपोज देमसेल्व्स. सो दैट वे आई थिंक द डोमेस्टिक एनवायरमेंट इंप्रूव हुई है. इकॉनमी अब इन लोगों ने जो कुछ भी एक्सट्रीमिस्ट ने यहाँ किया है उनकी वजह से डैमेज हुई है हमें. ये हमारे ऑर्डर्स बंद हुए हैं. हमारी जो इंश्योरेंस रेट्स इंक्रीज हुए हैं. फ्रेट चार्जेस बढ़े हैं. दैट इज़ बिकॉज वट एवर वॉज हैपनिंग इंटरनली ये जो प्रोसेशन निकाल रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं उनकी वजह से हमारी इकॉनमी को हमारी एक्सपोर्ट्स इफेक्ट हुई हैं. बट इंशाल्लाह ताला दैट वॉज अ शॉर्ट लिव्ड अफेयर. I am sure it will be corrected and it is being corrected in many ways. So we are the gainers. It's a win-win situation all the way down. That's what my assessment is.
फैसले के नतीजे से आप मुतमईन हैं?
Absolutely. पूरे मुतमईन हूँ और आइंदा भी है. जैसे आपने पूछा अगर हुआ तो यही फैसला लूंगा.
बहुत सारे लोगों का ख्याल है, चंद लोगों का ख्याल है, let me rephrase it, कि फैसले का एक नतीजा ये निकला है कि हमारा झुकाव अमरीका की तरफ बहुत बढ़ गया है. What's your view on that?
देखिए every country has its strategic interests and one has to be clear on its strategic interests. Aur jhukav wagaira ki baat nahi hai. You have certain interests and you play your cards according to your interests. Aapki United States ke sath hamari ek relationship rahi hai 50 saal. Kuch ye pichle 10 saalon mein disturb hui hai. Usko hum rectify kar rahe hain aur rectify honi chahiye. वो हमारे इंटरेस्ट में भी है और उनके इंटरेस्ट में भी है. एवरी नेशन फॉलोज इट्स नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. देयर इज नो अदर गाइडिंग प्रिंसिपल. तो योर ओन नेशनल इंटरेस्ट है उसकी. ये नहीं है उसका मतलब कि हमारे दूसरे इंटरेस्ट जो हैं उनको हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे. सो आर इंटरेस्ट आर देयर विद द यूनाइटेड स्टेट्स विच वी आर परसुइंग. इम्प्रूव होंगी रिलेशनशिप्स. डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव हुई है और आइंदा और इम्प्रूव होनी चाहिए. इसमें ये हमारा फायदा है और बाकी हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है उनको भी हम परसू करते रहेंगे.
लेकिन जो हमने हमारी जो रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो रही है जो आप कह रहे हैं इम्प्रूव हुई है लेकिन विजिबली कभी कभार लगता है कि नहीं हुई है. इसलिए कि मसलन जो F-16 जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक इमोशनल इशू बन गया था पिछले काफी सालों में और वो अमेरिका ने रिफ्यूज किया कि पाकिस्तान हैज बीन कॉम्पनसेटेड. तो डू यू फील दैट यू बीन कॉम्पनसेटेड और आप कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं कि व्हाई डू यू थिंक आवर रिलेशनशिप हैज इम्प्रूव्ड?
Yes, पहली चीज तो ये है कि जो हम दिखा रहे थे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स हमारी कंसर्न हमारी डोमेस्टिक कंसर्न्स जिसमें हम असिस्टेंस मांग रहे थे समोसे मांग रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स से भी मांग रहे हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक फील्ड में थी. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं सवाल ये है. इस पर मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा. हम पहले तो हमारा कंसर्न हमारा तीन चीज़ों से कंसर्न है. डेट से हमारा कंसर्न है दूसरा हमारी फिस्कल सपोर्ट, हमारी बजटरी सपोर्ट हमें चाहिए क्योंकि हमारे अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कुछ घटे हैं, और तीसरी चीज़ हमें मार्केट एक्सेस चाहिए। ये इन तीन एरियाज में हम मूव करना चाह रहे हैं क्योंकि इनका तीनों का डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन द इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान। नाउ टॉकिंग ऑफ डेट, बहुत से लोग डिसहार्टन होते हैं कि जी डेट राइट ऑफ ही नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट इज वन आस्पेक्ट, बट डेट राइट ऑफ नहीं अगर हो रहा है तो एक डेट रिलीफ भी होता है। डेट रिलीफ का मतलब ये है कि आपको उसके पीरियड ऑफ द डेट इतना एनलार्ज हो जाए कि आपको रिलीफ मिल जाए, और उसमें इंटरेस्ट रेट इतना रिड्यूस हो जाए तो और ज़्यादा रिलीफ मिल जाए। तो नाउ डेट रिलीफ का इशू ये है कि हम एट द मोमेंट इफ यू सी आवर बजट, 54% ऑफ आवर बजट गोज फॉर डेट सर्विसिंग। हम चाहते हैं कि अगर हमें डेट रिलीफ पैकेज ऐसा हो कि ये 54% हमारा घट जाए टू एनी परसेंटेज, वी आर ट्राइंग टू गेट द मैक्सिमम डेट रिलीफ, कि वो 40-45 पे आए, 40 पे आ जाए या 35 पे आ जाए, जितना भी हम घटा सकें। दैट इज द फिस्कल स्पेस दैट यू एक्वायर। नाउ यू एक्वायर्ड फिस्कल स्पेस, आप सिर्फ 10-15-20% आपके बजट बच रहा है। दैट इज द अमाउंट दैट यू नाउ यूटिलाइज ऑन योर डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट। अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपने बहुत सेंसिबली सिलेक्ट करने हैं उन पे, और वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए दैट दे गिव यू द मैक्सिमम रिटर्न टू योर इकोनॉमी एंड टू योर जीडीपी, टू योर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये अगर आप करें तो आप ग्रेजुअली इन अ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम यू विल गेट आउट ऑफ योर डेट ट्रैप। दैट इज द स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली द डेट स्ट्रैटेजी ये है हमारी कि यू गेट अ ब्रीदिंग स्पेस थ्रू डेट रिलीफ पैकेज, एंड विद इन दिस ब्रीदिंग स्पेस इफ यू गेट मनी ऑल्सो विच वी आर गेटिंग थ्रू PRGF एंड IMF। अब ये एक दफा आपके ही प्रोग्राम में मैंने सुना था कि वो कह रहे थे जी डेट ये IMF से तो हम पहले भी पैसे लेते रहे हैं बहुत, अब फिर वही कर रहे हैं हम ले रहे हैं। अगर आप वो कर्जे लेकर जाया करते हैं तो फिर तो जाहिर है, अगर हमने भी कर्जे लेकर जाया करने हैं, वो जैसे पिछले 12 साल में हुए हैं, पिछले 12 साल में हमारे कर्जे जो हैं डेट $14 बिलियन से चढ़ के $38 बिलियन पे चले गए, और जमीन पे क्या है, व्हाट इज देयर टू शो ऑन ग्राउंड, नथिंग। सो अगर हमने यही करना है फिर तो हमें छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान को हम नहीं ठीक कर सकते। लेकिन मुझे पूरा यकीन है हम ये नहीं करेंगे। हम ये डेट जब हम लेंगे, IMF से कर्जा लेंगे और ये ब्रीदिंग स्पेस हमें मिल गया तो हमारी अपने पास भी हमारे पास पैसे, फिस्कल स्पेस बन गई।
What would you do that money? What sort of projects do you have in mind?
Yes, we have already made our 5-year plan. We have made a 10-year economic development plan. उसमें 5 years के फोकस है। इस 5-year फोकस में हमारा प्लान ये था, we must get out of the debt trap. इसमें मैक्सिमम जो रिटर्न्स देंगे उन प्रोजेक्ट पे हम लगा रहे हैं, और ये रिटर्न देने वाले प्रोजेक्ट बेसिकली, वी आर एन एग्रेरियन सोसाइटी, 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन द विलेजेस, तो वी नीड टू गो फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। इससे वी किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, पॉवर्टी एलिविएशन भी इसी से एड्रेस होगी बिकॉज वी गो टू द कॉमन मैन। एग्रीकल्चर में जब हमने देखा व्हाट कैन वी डू, वाटर, पानी के प्रोजेक्ट, सो देयरफॉर इट इज पानी के प्रोजेक्ट, जब हम कहते हैं वी नीड स्मॉल डैम्स, रिजर्वॉयर्स, स्मॉल एंड मीडियम रिजर्वॉयर्स एंड कैनाल सिस्टम्स, इससे पानी आप पहुंचाएं उन जमीनों पे जो बारिश को तरसती हैं, ड्राउट जो हुआ उसे। अब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक कच्ची कनाल हम बना देंगे अगर, इससे हमें 600,000 acres ऑफ लैंड इरीगेट होगा। That translates into 600,000 bales of cotton each acre, roughly. And it translates into roughly $500 million. This is the return that you will get by making one canal. So, हमने basically water projects को आप देखें, Gomalzam Dam हमने शुरू किया, Nirani Dam हमने शुरू किया, हम Mangla Dam की height को 45 feet raise करना चाह रहे हैं। That means 3.5 million acre feet of water. Gomalzam Dam is 1 million acre feet of water. Nirani Dam is about 0.4 million acre feet of water. All told, there are more than million acres of land coming under cultivation. ان کے ساتھ ہم نے کنالز کا سوچا ہے, رینی کنال ہم نے سوچا ہے سندھ میں, ہم نے گریٹر تھل کنال ہم نے لانچ کر دیا ان پنجاب, ہم کچی کنال لانچ کر رہے ہیں بلوچستان میں, ابھی نہیں کیا, اس کی فیزیبلٹی ہو رہی ہے, میں اسی سال میں کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ کنالز جو ہیں دیز آر واٹ ول گیو اس دا ریٹرن لینڈ ایگریکلچر سے, اینڈ دس ول گیو اس فاسٹسٹ ریٹرن, اور یہ ہم کمپلیٹ کریں گے ود ان دا فرسٹ 5 ایئرس. اس کے علاوہ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس میں ہم بہت جا رہے ہیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے جا رہے ہیں جی کہ اس وقت آپ کی الیکٹرک جنریشن کیپیسٹی 70% از آن تھرمل, 30% از آن ہائیڈرو, 1% از آن کول. وی ہیو دا بگیسٹ کول ریزرو ان دا ورلڈ. پرائم منسٹر زو رونگ جی صاحب آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے چائنا کی 70% آف الیکٹریسٹی از آن کول. ادھر ہم سو رہے ہیں, ہمارا تھر کول بگیسٹ ان دا ورلڈ 1%, تو ہم اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چائنا سے اسپیشل ٹیمز آئی ہوئی ہیں, ہم تھر کول پروجیکٹ پہ بجلی کا لگا رہے ہیں, ہائیڈرو الیکٹریسٹی پروجیکٹ پہ جا رہے ہیں تاکہ اس ریشیو کو چینج کریں. ہم $1 billion وی آر اسپینڈنگ آن فرنس آئل ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی. پھر آپ کہتے ہیں وابڈا بجلی کی قیمت کیا کم کریں, کیا کریں, ہم نے پچھلے سالوں میں تو آپ نے یہ کر دیا ہے پاور جنریشن کا, اب ہم گریجولی اس کو ہائیڈرو پہ لائیں گے, کول پہ لائیں گے, تو قیمت کم ہوگی, وابڈا وائبل ہوگی, کے ای ایس سی وائبل ہوگی. یہ دوسرے پروجیکٹس ہیں ہمارے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو کنورٹ دی تھرمل پروجیکٹس انٹو گیس اینڈ کول اینڈ ہائیڈرو الیکٹریسٹی. سو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. تو یہ ہوگا ہماری ڈیٹ جو اسٹریٹجی ہے, اس میں ڈیٹ کی ریڈکشن تاکہ ہمیں بریدنگ اسپیس ملے, گیٹ منی فرام ابراڈ, جنریٹ یور اون فنڈ تھرو جنریٹنگ فسکل اسپیس, یوٹیلائز اٹ آن پروجیکٹس وچ ول گیو یو مور ریٹرن دین دا ایڈیشنل ڈیٹ سروس لائبلٹی دیٹ یو انکر آن یور سیلف. دس از دا سمپل اسٹریٹجی. آبویسلی اف یو بورو 1,000 rupees اینڈ یو ہیو ٹو پے بیک 1,100, اف یو جنریٹ 1,500 یو ہیو ارنڈ 400. But if you are so useless and you go down generate only 500, then you have lost 600. So this is simple. I am not an economist, but this is what I understand as a layman. This is what we are trying to do. On the other issue, fiscal support, uspe main kuch nahi kehna chahunga, wo to zahir hai kharcha hamara ho raha hai, to the whole world understands, and we have already got about $1.2 billion for our fiscal support, which is very good. The third part, market access, this is very important. Market access means reduction in duty, increase in quota. European Union has given us market access. Duty zero kar diya unhone, quota unhone 15% increase kiya, which in effect actually is about 24% increase through theoretical. This will roughly give us about $500 million capacity additional export. If that is the case, we'll have to generate our own capacity, increase our capacity. So that means factories لگنی چاہیے, اور لگ رہی ہیں, لوگ بہت انٹرسٹ سے دیکھ رہے ہیں, وہ فیکٹریز لگیں گی, جابس ہوں گی, ایکسپورٹ انکریز ہوگی. سملر مارکیٹ ایکسیس وی آر ٹرائنگ ود یونائٹیڈ اسٹیٹس ود آل ادر کنٹریز انکلوڈنگ جاپان. دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. سو دس از آر اوور آل اکنامک اسٹریٹجی. آئی ایم ویری ہوپ فل اینڈ آئی ایم ان شاء اللہ ویری کانفیڈنٹ دیٹ ود ان 3 to 5 years وی ول گیٹ دس کنٹری out of the debt trap. آپ نے F-16 کی بات کی, اس میں یس ان کے پرابلمس ہیں, اسی میں مجھے معلوم ہے ان کے پرابلمس, اس کی وجہ سے وہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹس دیے, بٹ ملٹری کانٹیکٹ اینڈ سینکشن سارے ہٹ گئے ہیں, اس کے نتیجے میں جو فائدے ہوں گے وہ گریجولی سامنے آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم آگے بڑھتے رہیں گے آن ملٹری کوآپریشن آلسو, بٹ لیٹس ناٹ ٹیک دا F-16 ایشو as the only one and presume that is the end of all the cooperation in the future. That's not the case. This is one issue. They have their problem on that. That doesn't mean all other issues are closed, the avenues are closed. They remain open.
So is the F-16 issue closed now? Is it over?
It's not, I wouldn't like to say that it is absolutely over. We need to adhere to their, we need to take their sensitivities into account and follow a course of action according to their sensitivities and then try to resolve issues.
US is a super power, unke jo goals aur objectives hain wo bhi ek bade scale pe wo set karte hain. Baaz halkon ka khayal ye hai ki ye Afghanistan ka to mehaz bahana ban gaya hai, bada khel ho raha hai. America ne is Afghanistan ko bahana bana ke is region ke andar apne kadam jama lene hain, aur ye Gulf region ke baad is the second most and probably in the future the most important oil rich region. US यहाँ पे मौजूद होगा, चाइना भी बैठा है, चाइना के अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, एंड वन परसेप्शन इज कि इवेंचुअली द यूएस विल फाइट इट आउट विद चाइना. इफ दैट वर टू हैपन, वेयर वुड पाकिस्तान स्टैंड?
ये बड़ी फ्यूचरिस्टिक आप बात कर रहे हैं. एज आई सेड, एवरी नेशन हैज इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स, नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स. सेंट्रल एशियन रिसोर्सेज आर देयर, उनका अपना इंटरेस्ट है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का, टू gain economic, their economic interests are there, their commercial interests are there, and therefore it's a mutual benefit of, they would like to gain commercially and economically. Hame is pure scenario mein apna interest dekhna hai, aur jo aapne kaha hai, exactly, if that is the interest, we have a very important geographic role to play. The commerce routes are through Pakistan in the south, and that is our significance. Yehi main kehta raha hu ki we should understand, अगर कोई भी दिस रिसोर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया अगर किसी डायरेक्शन में जाएगा, वेदर इंडिया वांट्स इट और इट हैज टू गो टू द सी, इट हैज टू गो थ्रू पाकिस्तान और ईरान, एंड पाकिस्तान इज द मोर नेचुरल कोर्स. सो वी शुड बी वेरी हैप्पी दैट दिस इज आवर जियोग्राफिक सिग्निफिकेंस, और हमें इससे अपना फायदा देखना चाहिए, अपना इकोनॉमिक फायदा देखना चाहिए और उसकी तरफ जाना चाहिए. बाकी अमेरिका के कंसर्न विद चाइना, That is a different issue, और हमें अपना, हमारी strategic interest है, हम अपनी course follow करेंगे.
कुछ अखबारात में काफी articles छप रहे हैं कि अमेरिका का कोई plan है कि वो पाकिस्तान के nuclear assets को dismantle करना चाहते हैं या उस पर command and control assume करना चाहते हैं, चाहे religious extremists अगर आने लगे तो फिर हम मूव करेंगे. ये सारे मुश्किल fears बार बार रेज हो रहे हैं, और अब लोग भी ये सवाल करने लगे हैं कि शायद अमरीका वाकई हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे आके कोई कब्जा जमाना चाहती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
ये तो शुक्र है कि हमने ये कोलिशन के साथ ज्वाइन कर गए हम, अगर ये नहीं किया हुआ होता तो फिर शायद ये इस किस्म का सिनारियो हो रहा होता जैसे आप कह रही हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल ये सिनारियो नहीं है. उनको पूरी तरीके से वाजे है कि ये एक कस्टोडियल कंट्रोल जो है ओवर ऑल आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स, न्यूक्लियर एंड मिजाइल, इज वेरी मच इन प्लेस. हमने एक नेशनल कमांड अथॉरिटी बनाई है, इट इज मोस्ट इफेक्टिव. सो देयरफॉर The checks and controls and safety and security of our national assets, strategic assets, is in place. और ये हमने उन्हें बता दिया, and they are convinced that there is no danger at all to them at the moment, not whatsoever. And neither is anyone talking of anything of this sort. ये private कोई लोग हैं जो एक scenarios, एक utopian किस्म के scenarios वो paint करते हैं, और उन scenarios में they see some damage to our strategic assets. This is not the national stand, and all the coalition partners, including United States, understands ke hamari strategic assets bilkul safe and secure hands mein hai. There is no security problem to them at all.
Let me ask you a yes and no question, and there's a follow-up question to that. Baaz halkon ka khayal hai ke Pakistan mein se kuch nuclear information leak hui in the neighborhood. Is that a fact? Or is it just fabrication and fiction?
This is absolutely a fabrication and fiction.
यहाँ
से no.
Okay. If that is the question, फिर जो हमारे जो दो साइंटिस्ट हैं बशीरुद्दीन महमूद साहब और अब्दुल मजीद और उनके साथ पांच और लोग भी हैं, अभी तक वो कस्टडी में क्यों हैं? वो क्या मामला है?
इनकी ये इनकी कुछ शक हुआ था कि ये कुछ कॉन्टेक्ट में थे अक्रॉस द बॉर्डर, लेकिन एक चीज क्लियर है कि इनका कोई कंसर्न नहीं था विद द इंस्टीट्यूशन विच हैज वाज इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर प्रोग्राम. इनका कंसर्न कुछ और ऐसी इंस्टीट्यूशन में था जिससे कोई ताल्लुक नहीं था इन हमारे न्यूक्लियर डिवाइसेस का. तो इनकी कोई बिल्कुल ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इनको इनकी नॉलेज भी नहीं है उसमें. अगर ये जाकर बैठ भी जाए कहीं, इनके ही डजंट नो एनीथिंग दैट ही कैन गिव. But he was in contact. He did get in contact, and he was trying to probably violate the law of the land, where there is a secrecy act against all scientists that work in Pakistan. So we are just trying to examine कि किस हद तक इन्होंने क्या कुछ किया है, वो हम examine कर रहे हैं.
ये पाकिस्तानी कब से भी हैं ये साइंटिस्ट या अमेरिकन भी उनको क्वेश्चन कर रहे हैं? कुछ अखबार आपने लिखा था कि अमेरिकन की कस्टडी में है।
नहीं नहीं, बिल्कुल पाकिस्तानी कस्टडी में है जी, बिल्कुल 100% दे इन पाकिस्तानी कस्टडी एंड देयर इज नो डाउट इन दैट।
तो वो रिलीज कब होंगे डू यू थिंक?
ये मुझे नहीं मालूम है, ये जब तक हम इंफॉर्मेशन इनसे गैदर करेंगे कि किस हद तक ये इन्वॉल्व हैं और क्या कर रहे थे ये, वी वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर।
Let's talk about, you've talked about the potential that there is between Pakistan and the US to deepen our cooperation, and there are lots of things that we can do together. Let's also talk about the challenges and the problems that are likely to emerge. Do you see any friction points emerge in the near future between Pakistan and the US?
No, I don't see any friction point at all. They understand our concerns. Let me tell you, on the positive side, inko puri hamari sensitivities and concerns. They understand them and they're very conscious, extremely conscious of that, I would say. The word extremely, and I know, I mean every word of it. They are extremely conscious of my sensitivities, my government sensitivities and Pakistan's sensitivities. Therefore, koi point of friction nahi hai.
लेकिन एक कुछ एहसास ये होता है कि Americans की कुछ आदत है, कुछ track record है कि जब अपना interest हुआ तो बहुत अच्छे होते हैं और जब अपना इंटरेस्ट खत्म हो गया तो गायब हो जाते हैं। तो इस दफा फिर ये डिसअपीयरिंग एक्ट तो नहीं पुल करेंगे ये?
हाँ, ये वही आपने सही बात की कि हर मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट हैं। हम, हमारा प्रॉब्लम ये है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि व्हाट इज, वी मस्ट, व्हेन वी अराइव एट एनी डिसीजन और परसेप्शन, वी शुड एनालाइज व्हाट इज द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। अब हमें बहुत ये परेशानी है कि जी 89 में हम फ्रंटलाइन स्टेट थे और वी वर डिच्ड एंड अबैंडन्ड एंड नाउ अगेन द सिमिलर थिंग विल हैपन। दिस इज अ कंसर्न विच आई सी ऑन द टेलीविजन डिस्कशन वगैरह में कई दफ़ा मैं देखता हूँ। देखें 89 की सिचुएशन में यू कांट प्लांट 89 सिचुएशन टू 2001, उसको प्लांट किया इधर और डिसीजन यहाँ ले ली। 89 में द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वर्ल्ड पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स इन अफगानिस्तान एंड इन पाकिस्तान, was their concern was with the Soviet Union, the breakup of the Soviet Union and then the Warsaw Pact in Europe. So their concern was with Soviet Union and Europe, Germany ki unification, Berlin Wall wagaira. What is their concern now? Their concern is with terrorism and maybe also jaise kaha gaya hai ki the commerce from Central Asia. If that be their concern, that concern will remain and they will remain concerned with this region. So I have no reason to believe that they would abandon or lose interest in the region.
आपने बात की concerns की और आपने कहा कि दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मामला है जिसके ऊपर उनका concern रहेगा। बाज़ हलकों में सवाल उठाया जा रहा है कि आपने बार बार ये कहा है कि दहशतगर्दी और freedom struggle के अंदर बड़ा फर्क है और वी कंटिन्यू टू मेंटेन दैट डिस्टिंक्शन, लेकिन हमें लगता यूं है कभी कभी कि वाशिंगटन शायद उस डिस्टिंक्शन को डजंट सब्सक्राइब टू दैट। आई एम रेफरिंग टू कश्मीर, मसलन ये कि उनकी नज़र में ऑर्गेनाइजेशन सच एज लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद, दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वॉच लिस्ट पर उनको डाल दिया। उससे पहले एक और कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो खदशा ये है कि शायद अफगानिस्तान का मामला तय करने के बाद उनकी तवज्जो कश्मीर की तरफ होगी और कश्मीर के जो फ्रीडम स्ट्रगल ग्रुप है उसको भी वो डेजिग्नेट कर देंगे एज टेररिस्ट एंड दैट विल बी द एंड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
नहीं, आई डोंट थिंक सो, दिस इज अगेन अ मिसपरसेप्शन। अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट देखें प्रेसिडेंट बुश की, उसमें ही हैज सेड दैट द कश्मीर इशू नीड टू बी रिजॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। ये तो बहुत कम लोग कहते हैं। ही स्टिल सेड इट व्हेन वी वेंट टुगेदर, दिस इज हिज जॉइंट स्टेटमेंट, अ पार्ट ऑफ हिज जॉइंट स्टेटमेंट। He very much understands that there is a freedom struggle going on in Kashmir. Now, ये जो organisations हैं, yes, अगर कोई organisation bomb blast करके 25-30 आदमी मारे जाते हैं, 15 civilian, 20 civilian, तो उस वो terrorist act है एक। और अगर वही कोई organisation अफगानिस्तान में भी घुसी हुई है, वो वहाँ भी कोई अपनी brand of एक्सट्रीमिज्म दिखा रही है या दुनिया के किसी और हिस्सों में घुसकर शोर मचा रही है कि हम उधर भी कोई एक्टिविटी करेंगे, तो वहाँ वो फिर टेररिज्म में मुलव्वस हो जाती है। बट उससे ये नहीं मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई बात अगर हो रही है तो वो कह रहे हैं कि कश्मीर में टेररिज्म हो रही है, ये बात नहीं है। वी मस्ट बी वेरी क्लियर, कश्मीर में टेररिज्म वो नहीं कह रहे।
लेकिन इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, आगरा समिट के बाद जरा कुछ वो वर्चुअली फ्रीज हुए हैं, कोई आगे कोई मूवमेंट नहीं हुई है। आपने कहा कि आप खटमंडू में आप ملاقات کرنے کو تیار ہیں, لیکن انڈیا سے ایک کنسسٹنٹلی ایک ریٹرک آتی ہے ہاسٹیلٹی کی, اگریشن کی, فنگر پوائنٹنگ کے, پاکستان نے یہ کیا, پاکستان نے وہ کیا. تو آپ کے خیال میں وائی کانٹ دا ورلڈ کمیونٹی اور ممالک وہ لوگ یہ کیوں نہیں پریشرائز کرتے انڈیا کو بھی کہ وہ بھی اپنی ریٹرک کم کریں اور بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھیں؟
جی ہاں, آئی تھنک کافی حد تک اس کا احساس ہے انٹرنیشنلی کہ یہ بات چیت دوبارہ شروع ہونی چاہیے, اینڈ پاکستان اینڈ انڈیا شوڈ ریزیوم دا ڈائیلاگ پروسیس. اس کا بہت احساس ہے. ابھی جو بیلجین پرائم منسٹر آئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا یہ بات چیت ہونی چاہیے. سب یہ کہہ رہے ہیں, جتنے بھی یہاں ڈگنیٹریز آئے ہیں سبوں نے یہ کہا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے, بلکہ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز اٹ. ان فیکٹ آئی ووڈ سے اس ہماری کولیشن میں جوائن کرنے کا ایک پازیٹیو کشمیر کی طرف یہ افیکٹ ہوا ہے. کشمیر ہیز کم مور ان دا لائم لائٹ اینڈ آلسو ان دا پازیٹیو سینس دیٹ ایوری ون از ناؤ سیئنگ یہ ڈائلاگ پروسیس اسٹارٹ ہونا چاہیے. ایوری ون از سیئنگ دیٹ اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ ٹو انکریج دس پروسیس آف ڈائلاگ ٹو بی انیشیٹڈ, سب کانٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں. انڈیا کی طرف سے جو ریٹورک آ رہی ہے دیٹ از انفارچونیٹ, اینڈ وی ڈونٹ گیٹ امپریسڈ ایٹ آل بائی دس آفینسو ریٹورک آف دیئرز. وی نو دیٹ آر سیکیورٹی از ویری ویل گارڈڈ, اینڈ میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ ان کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. کوئی وہ آفینسو ایکشن پاکستان کے خلاف نہیں لے سکتے, اگر لیں گے تو ہم ان کو سبق سکھا دیں گے.
پاکستان ریپیٹڈلی کہتا ہے کہ کشمیر کور ایشو ہے پاکستان کے لیے, لیکن انڈین فورن منسٹر جسون سنگھ نے کہا ہے کہ کشمیر از ایٹ دا کور آف انڈین نیشن ہوڈ. تو یہ اتنی ارریکنسیلیبل پوزیشن جو ہے, اس کے لیے آپ کیا, آپ کے سامنے کیا ہوسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟
ادھر اوپینین یہ جو ہے, یہ جو آپ نے کہا ہے یہ تو بالکل ارریکنسیلیبل ہیں, ایبسولوٹلی. ان کو اگر ان کو بالکل ماڈیفائی کرنا پڑے گا اپنے اسٹینڈ کو, کیونکہ کشمیر جو ہے یونائٹیڈ نیشنز میں ریکگنائزڈ ایک ڈسپیوٹ ہے وچ ہیز ٹو بی ریزالوڈ اکارڈنگ ٹو دی ویشز آف دی پیپل آف کشمیر. ناؤ یہ کہنا ہے کسی انڈیویجول کا, ہی از گیونگ سم ایکسٹریمسٹ ویوز. لیکن آگرہ میں جو ہم گئے تھے, جو ڈیکلریشن ہم نے ڈرافٹ کر دیا ہوا تھا وچ واز ناٹ سائنڈ انفارچونیٹلی ایٹ دا لاسٹ مومنٹ بیکاز آف اگین یہ ایکسٹریمسٹ ویوز جو دے رہے ہیں انہیں کی پرابیبلی وجہ سے, وہ تو ایکسیپٹ ہو گیا تھا کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹ, از این ایشو وچ نیڈس ٹو بی ریزالوڈ ٹو امپروو ریلیشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو یہ تو ادھر ریکگنائز ہوا تھا. تو دیر از اے اسپلٹ ایون ان دا انڈین پالیٹی آن واٹ دیئر ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز کشمیر شوڈ بی. آئی تھنک ارلیئر دا those who are for a process of negotiation and resolution of the dispute, they should gain ascendancy over those who are extremist, who are against. ye jo aap keh rahi hain, jo remarks is kisam ke extreme remarks de rahe hain.
11 september ke baad jalan sahab duniya mein badi tabdiliyan aayi aur kehte hain ki duniya taqreeban sari badal gayi. پاکستان کی جو اسٹریٹجک آؤٹ لک ہے وہ بھی بدل گئی, پاکستان کی جو اسٹینڈنگ ہے وہ بھی بدل گئی. کیا آپ کے خیال میں کشمیر پالیسی کے آبجیکٹیوز جو ہیں پاکستان کے, وہ بھی اس سے متاثر ہوئے اور do they remain the same? And if they remain the same, what are those objectives?
نہیں, پالیسی آبجیکٹیوز ریمین دا سیم, ایبسولوٹلی. دیر از نو چینج آن آر کشمیر اسٹانس. کشمیر از دا کور ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. وی ہیو ادر ایشوز آلسو. ناؤ یہ انفارچونیٹ ایک اور چیز ہے کہ یہ انڈینز پروپیگیٹ یہ کرتے ہیں کہ میں ایک یونیفوکل آدمی ہوں, میں صرف کشمیر کی بات کرنا چاہتا ہوں. دس واز ٹولڈ ٹو می بائی دی بیلجین پرائم منسٹر ہو کیم ہیئر, کہ وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف اس لیے یہ سکٹل ہو گیا پروسیس کیونکہ وہ کشمیر کے علاوہ کچھ بات ہی نہیں کر رہے تھے. دس از ایبسولوٹلی رانگ. وی آر پریپیئرڈ ٹو ڈسکس آل ایشوز ود کشمیر ود انڈیا, بٹ دا فوکل ایشو ڈسپیوٹ از کشمیر and it remains Kashmir. So usme koi change nahi hai hamari, and we want to start initiate the process of dialogue with India to solve the Kashmir dispute through dialogue process in accordance with the wishes of Kashmir.
Dialogue towards what end? Jis tarah Katrina ne bhi kaha ke there is a doable and there is a desirable. Desirable to ye hota ke Kashmiriyon ko jis tarike se UN Security Council resolutions mein unka haq diya gaya unko mil jata, but that doesn't seem to be possible, at least that's what one perception is. تو اس ماحول میں ڈوئبل کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے کشمیر کے اوپر؟ از دیر اے میٹنگ گراؤنڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کشمیر؟
اس میں میری بلیف یہ ہے کہ ون شوڈ ناٹ بی, اٹ از ڈوئبل اف دیئر از اے ول آن بوتھ سائڈز. लेकिन सॉल्यूशंस में अभी हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ही आप सॉल्यूशन में पढ़े यू विल नॉट मूव फॉरवर्ड ऑन द डायलॉग, एक एक करके स्टेप लेना चाहिए। और मैंने वाजपेयी साहब को भी यही कहा था, इस पूरे प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं, बिकॉज ही आस्क्ड मी एंड आई सेड हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड। स्टेप नंबर 1, मैंने उन्हें क्रेडिट दिया था कि आपने प्रोसेस ऑफ डायलॉग शुरू किया, आपने मुझे इन्वाइट किया, दिस इज अ बोल्ड स्टेप ऑन योर पार्ट, दिस इज स्टेप 1, बट दे हैव स्लिड 2 स्टेप पीछे चले गए, अब दे विल हैव टू टेक दिस स्टेप 1 अगेन। सो स्टेप 1 होना चाहिए डायलॉग प्रोसेस। स्टेप 2, लेट अस रिकॉग्नाइज द सेंट्रलिटी ऑफ कश्मीर एज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑल अदर इशूज इंक्लूडेड बट सेंट्रलिटी ऑफ कश्मीर, दिस इज स्टेप 2। स्टेप 3 वुड बी लेट अस नेगेट अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, करते हैं वॉट इज अनएक्सेप्टेबल टू यू एंड वॉट इज अनएक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान, उसको एलिमिनेट कर दो। स्टेप 4 इज द फाइनल एक्ट, आउट ऑफ द रिमेनिंग वॉट इज द सोल्यूशन, दैट इज द वे वी शुड गो फॉरवर्ड। आई वुड नॉट लाइक टू टच ऑन वॉट इज द सोल्यूशन, आई वुड से स्टेप 1 लेते हैं, 2, 3, 4 को छोड़ते हैं फिलहाल, एक एक करके स्टेप लें, अगर वो वापस गिर जाते हैं।
टू मूव अ लिटिल बिट नाउ, कि अगर हम कुछ डोमेस्टिक इश्यूज पे कुछ डिस्कशन कर लें, कि इलेक्शंस अगले साल होल्ड किए जाएंगे, आपने रिपीटेडली कहा है, तो मेरा सवाल ये था कि ये इलेक्शंस पार्टी बेसिस पे होल्ड किए जाएंगे, और दूसरा सवाल ये उसी से रिलेटेड कि विल यू कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट, क्या आप सदर का ओहदा उसके बाद भी आप कंटिन्यू करेंगे कि नहीं?
पार्टी बेसिस पे होगी बिल्कुल 100%, और दूसरा भी 100% आंसर यस। आई थिंक मैं अपने लिए नहीं, मुझे अपनी पर्सनल एम्बिशंस आई कैन शो यू नहीं है मुझे, और प्रूव मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आई मीन एवरी वर्ड ऑफ इट, मेरी पर्सनल एम्बिशन नहीं है। आई थिंक ये जो पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग हम कर रहे हैं, और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, टू गिव इट कॉन्क्रीट शेप, टू गिव इट रूट इन टू पाकिस्तान, सो दैट ये इंटरफियरेंस required from the armed forces does not recur in the future, इसको हम इसको solidify करने के लिए मेरे ख्याल में मेरा role होगा। तो that is why we want to have sustainability of all the reform, the restructuring that we are doing, which includes political restructuring. उसमें because my role is there, so I think I'll have to continue.
एक्सट्रीमिज्म एक बहुत बड़ा इशू है जो पाकिस्तान में, और हमने देखा कि उसके बहुत सारे मनफी नतायज भी निकलते हैं, नेशनल यूनिटी के ऊपर उसका असर होता है, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर उसका असर होता है, और प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा बन जाता है बाज़ोकात। बट देयर इज अ व्यू दैट एक्सट्रीमिज्म थ्राइव्स इन अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम, जहां पे खला होगा सियासी वहां पे एक्सट्रीमिज्म जन्म लेगा। अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, दो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो एग्जाइल में हैं इस वक्त, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं वो हाउस डिटेंशन में हैं, एमक्यूएम के लीडर लंदन में बैठे हुए हैं, देयर इज अ पॉलिटिकल वैक्यूम इन पाकिस्तान। वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, जो बाहर से भी लोग हैं उनको बुला रहे हैं, हम कह रहे हैं जी क्या क्या बैठ के जिरगे की बात कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन, व्हाई कांट वी हैव अ सिमिलर प्रोसेस इन पाकिस्तान?
ये लास्ट पार्ट मुझे नहीं समझ, बाहर से लोगों को बुलाने के लिए मतलब हम भी यही करें?
जस्ट अ क्वेश्चन के जी, वी टॉक अबाउट यू नो बरिंग द पास्ट एंड बिल्डिंग अ फ्यूचर, can't we do the same in Pakistan?
There is no burying the past as far as the leadership is concerned, jinko aap keh rahe hain jo bahar baithe hue hain, do to unme se try hue hain 2 dafa Pakistan mein, aur isliye unka role aapne dekh hi liya hai, Pakistan ne unhe dono reject kiya, Pakistaniyon ne reject kiya unhe, but ye political vacuum ki aap baat kar rahe hain, ha ji ha, ye एक हद तक आपकी बात सही है, इस वैक्यूम ही को हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैक्यूम में अच्छाई ये हुई कि इस वैक्यूम में हम अपनी पूरी रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस ला रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी, या इंस्टीट्यूशन नहीं फंक्शन करेंगे, एंड वी एज लॉन्ग एज वी हैव टू फंक्शन इन अ वेरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनलाइज मैनर, वो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न उसको हम ग्रास रूट से ऊपर उठा रहे हैं। अब हमने लोकल बॉडी इलेक्शंस करवा दिए, सो आई वुड से द वॉइड एट द ग्रास रूट लेवल इज फिल्ड मच बेटर देन एवर बिफोर। अभी जो नाजिम्स के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और वो जो नाजिम्स का रोल है जो वो प्ले करने लगे हैं, कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट आई हैव इंटरेक्टेड विद ऑल ऑफ देम, बहुत अच्छी तरीके से ग्रास रूट लेवल पे पीपल्स इंटरेक्शन हैज स्टार्टेड, दिस इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, जो पहले थी ही नहीं वो हमने कर दी है। अब एक ऊपर लेवल पे, यस आई एग्री, एक ऊपर लेवल पे वैक्यूम है प्रोविंशियल सेंट्रल लेवल पे, बिकॉज माई कैबिनेट एंड प्रोविंशियल कैबिनेट आर नॉट पॉलिटिशियंस रियली। दिस वी विल फिल, हमने रोड मैप दे दिया, उसको हम फिल करेंगे, एंड आई वी विल फिल इट इन अ मैनर दैट देर आर चेक्स एंड बैलेंसेज इन द पोलिटिकल सिस्टम एंड अ रियल डेमोक्रेसी इज एस्टैब्लिश्ड। बाहर जब मैं हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोगों से बात कर रहा था, उन्हें मैं दे आर वेरी कंसर्न अबाउट डेमोक्रेसी, मैंने उन्हें यही कहा था कि अनफॉर्चुनेटली वी लुक फॉर द लेबल ऑफ डेमोक्रेसी मोर, एंड आई जब मैं लेबल कहता हूँ, लेबल इज द इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गया और वो बैठ गई, डेमोक्रेसी है नहीं, लेबल बस लगा हुआ है। हमने रियल डेमोक्रेसी एसेंस ले आए हैं, लेबल हम अक्टूबर 2002 में लगाएंगे और ये जो वॉइड आप बात कर रहे हैं उसको हम फिल कर देंगे। नो टू और थ्री पीपल शुड होल्ड द पॉलिटिकल सिस्टम होस्टेज, देयर इज देयर आर लीडर्स हियर, पाकिस्तान शुड कम अप विद लीडरशिप, देयर आर लीडर, देयर इज लीडर, देयर इज इमेंस टैलेंट इन पाकिस्तान, एंड आई एम वेरी होपफुल इन द फ्यूचर दैट कोई ऐसा वॉइड नहीं होगा, दो तीन लोगों से वॉइड नहीं होता है।
पाकिस्तानियों की बात करते हैं जनरल साहब, दो मामला है पाकिस्तानियों से मुतलक बिलखसूस जो पाकिस्तान से बाहर हैं इस वक्त, जिनके ऊपर बड़ी इंटरनेशनल हेडलाइंस भी बनी हुई है और पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा कंसर्न है। एक तो वो पाकिस्तानी जो अमेरिका में मौजूद हैं और जो समझा जा रहा है कि इस वक्त दे आर बीइंग विक्टिमाइज इन अ विच हंट, जिसका ताल्लुक जिसके पास ग्रीन पासपोर्ट है उसको धर लिया जाता है, या जो पाकिस्तानी ऑरिजिन का है उसको पकड़ लिया जाता है, डिटेंशन में डाल दिया जाता है, आम लोगों का ख्याल ये है। व्हाट इज योर गवर्नमेंट डूइंग अबाउट दैट? एंड सेकंडली रिलेटेड टू द सेम इशू, वो पाकिस्तानी जो इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, यहाँ से गए कुछ भूले भटके थे, कुछ इनोसेंट थे, बाज़ों को लीडर्स ने मिसगाइड कर दिया, उनके बारे में हमारी क्या पॉलिसी?
जी हाँ, पहले तो पाकिस्तान, ये मुझे बहुत ज़्यादा इसकी खबरें मिली थी और बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया था ये यूनाइटेड स्टेट्स में पाकिस्तानियों के खिलाफ। इसका पहली चीज़ तो ये है, हमारी एम्बेसडर जो वहाँ है मलिया लोधी ने एक्शन किया, उधर स्टेट डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने टेकअप किया ये केस, मैंने यहाँ हमने उनके एम्बेसडर को बताया है, उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं अमेरिकन एम्बेसडर ने। मैंने इसके ऊपर प्रेसिडेंट बुश से बातचीत की है, and he gave me an assurance that yeah, this is not, his words were this, he got worked up, he said this is not what is United States, we will not tolerate this kind of thing, and he said that he has already told the unke attorney general ko ke such jo bhi is kism ki cheeze harkate kar rahe hain unko band karna chahiye। having said that, mere khayal mein ye kafi had tak exaggerated bhi tha, in that ek to illegal immigrants bahut hai, वो जब पकड़े जाओ वो पाकिस्तान से भी है। पहली चीज, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं हो रहा, ये एक मिसपरसेप्शन है। ये जो कोई भी फॉरेन नेशनल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली ये क्योंकि तमाम मुसलमान इन्वॉल्व थे इस टेररिस्ट एक्ट में, तो थोड़ा सा ज़्यादा नज़ला मुसलमानों की तरफ गिरा, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों की तरफ टारगेटेड नहीं था। और पाकिस्तानियों की तरफ अगर से अगर कोई गड़बड़ हुई है, थोड़ी ज्यादती हुई है, वो कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनमें से, सो ये कुछ एग्जैजरेटेड है, बट वी हैव टेकन आवर एक्शन। हमने प्रेसिडेंट बुश से मैंने बात कर ली और किया क्या किया जाए, तो काफ़ी हमने कोशिश की है। अच्छा, अभी पाकिस्तानी जो अफगानिस्तान में है, इनको मैं यही कहूँगा, ये अपनी मर्जी से गए, इनके अपने कोई सेंटिमेंटल इमोशनल एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस व्यूज़ के साथ वो उधर गए। इनको तो सबक खुद सीख लेना चाहिए कि इनकी रूट्स पाकिस्तान है। किसी और मुल्क में जाएंगे आप, किसी और मुल्क के इंटरनल अफेयर्स में आप दखल अंदाजी करेंगे, व्हेन द चिप्स आर डाउन व्हाट विल हैपन टू यू, यू शुड ये देखें आप क्या हो रहा है। जबकि वहाँ के लोकल्स जो हैं वो तो आराम से सरेंडर कर गए, इनको कहा ये पकड़ो और उन्होंने उनको सारी कैजुअलिटीज हो रही हैं। दे शुड ड्रॉ अ लेसन, डोंट पोक योर नोज इन अदर्स अफेयर्स, अपने मुल्क में रहो, अपने मुल्क को ठीक करेंगे हम, अपने मुल्क से आपकी रूट्स हैं, आपकी वाबस्तगी है, यहीं रहें आप, बाहर जाकर ना अपने आप को डैमेज करें। वी शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम एवरी पाकिस्तानी, स्पेशली जो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जिन्हें मैं कहता हूँ, उनको भी सबक सीखना चाहिए कि उनके साथ क्या सलूक हुआ है। जो वहां से थोड़े बहुत वापस आए हैं, मुझे मालूम है उनके साथ तालिबान ने क्या सलूक किया, वो खुद बता रहे हैं हमें कि उनसे पैसे भी ले लिए, उनके बिस्तरे ले लिए, उनको उनके हथियार भी ले लिए थे, ये उनके साथ सलूक हुआ है। تو ان سے میں یہی کہوں گا پاکستان آپ کا ملک ہے, پاکستان کو اچھا بناؤ, پاکستان کو طاقتور بناؤ. آپ کو جو کنسرن ہے اسلام سے اتنا ہی ہمیں اسلام سے کنسرن ہے. اسلام کو مضبوط اگر کرنا ہے پاکستان کو مضبوط کرو, پاکستان کی مضبوطی سے اسلام مضبوط ہوگا, کہیں اور نہ جائیں, آپ یہیں رہیں.
On a personal note, and some of my last question to you, you have often said that this is a job that you didn't want. Ye jitna mamla hua ye aap nahi chahte the, but you know this responsibility was thrust upon you ever since the October 12th takeover took place. You have been saying it ki ye mujhe kisi ne dhakka de diya, main khud nahi karna chah raha tha. Are you happy eventually in the final analysis that it fell to you to take these decisions? These are very important decisions. کہ یہ رسپانسبلٹی جو آپ کو ملی ہے, آر یو ہیپی دیٹ یو ہیو دس رسپانسبلٹی؟
آئی وڈنٹ لائک ٹو ساؤنڈ بوسٹ فل, بٹ ریئلی آئی ایم ویری ہیپی دیٹ آئی ہیو ڈن الاٹ فار پاکستان اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو الاٹ فار پاکستان. میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں, میرے خیال میں پاکستان میں ان چیزوں کی ضرورت تھی, تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سک رہا ہوں, کیونکہ بہت حالات خراب تھے, بہت ہی خراب تھے. مجھے اندازہ نہیں تھا کتنے خراب ہیں. جب میں 99 میں آیا ہوں اس کے بعد ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہاں تو ایک بھی چیز ٹھیک نہیں ہے, مطلب ایک بھی چیز ٹھیک نہیں تھی. تو اس میں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں کچھ اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں. کام مشکل ہے, آسان نہیں ہے. پاکستان کوئی آسان ملک نہیں ہے گورن کرنا, کیونکہ ادھر ہمارے بہت ہی پرابلمس ہیں, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس کو ہم ملک کو آگے لے کر چلیں گے. جتنا ہم نے کیا اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالی آگے لے کر چلیں گے, تو مجھے اس بات کی خوشی
ہے. Has the experience changed you in any way?
Yes, maybe it has brought a lot of balance and maturity into me. I was quite a carefree kind of a person and maybe I'm more it has sobered me down, it has brought more balance into me, I think.
Sadr e Pakistan Jal Parvez Musharraf, thank you very much for a delightful interview.
Thank you very much. Thank you.
Nazreen, iske sath hi news night ka waqt khatm hua. Talat Hussain aur Katrina Hussain ko ijazat dijiye. Allah Hafiz.